प्रेरक उद्बोधन। बोर्ड परीक्षा परिणाम से उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए बिलासपुर जिला प्रशासन की पहल। जिले के आला अधिकारी और मोटिवेटर्स 10वीं और 12वीं के बच्चों और पालकों को फेसबुक लाइव द्वारा प्रेरित कर रहे हैं। अरपा सामुदायिक रेडियो ऐप और वेबसाइट पर इन प्रेरक संवादों का प्रसारण किया जाएगा। सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे, दोपहर 3 बजे से इन दोनों ही प्रेरक उद्बोधनों का पुनः प्रसारण होगा। इस कड़ी में आज सुनिए मोटिवेटर श्री विवेक जोगलेकर का प्रेरक उद्बोधन।
सभी पालकों और गुरुजनों को मेरी ओर से विशेष नमस्कार इस सिलसिले में कि अभी 10वीं और 12वीं के रिजल्ट प्रतीक्षित हैं। बच्चे तो तनाव में हैं ही, पर पालक भी बहुत तनाव में हैं, और उनका कारण स्वाभाविक भी है, क्योंकि बीते कुछ सालों में हम ये देख रहे हैं कि रिजल्ट जब मनोवांछित नहीं होता तो बच्चे आत्मघाती निर्णय ले लेते हैं, कुछ सुसाइड करने का अटेम्प्ट करते हैं, और कुछ तो दुर्भाग्य से उसमें सफल भी हो जाते हैं। और इस बात का बड़ा दबाव खास करके पेरेंट्स पर होता है। तो मैं चाहूंगा कि इस सिलसिले को, इस प्रेशर को कैसे हम लोग संभालें, हैंडल करें, इस पर मैं थोड़ी अपनी राय आपके सामने रखना चाहूंगा। पर एक बात मैं और इसके साथ जोड़ रहा हूं, वो ये है कि ये कोई वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है। ये अभ्यास जो है, जो आज आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये आज किए और ये परीक्षा का रिजल्ट खत्म होने तक है, और उसके बाद उसकी इतिश्री हो जाएगी और फिर हम पुराने ढर्रे पर लौट आए, ऐसा नहीं है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि एक रिसर्च, जिसको हम अनुसंधान भी कहते हैं, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान ये कहता है, उसने ये पाया है कि 12 से लेकर के 19 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं वो बेहद संवेदनशील मनोदशा में होते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बात सच है कि हम भी उस उम्र से होके गुजरे हैं, हम भी उतने ही संवेदनशील रहे, पर ये बात अब हमारे लिए बीते दिनों की हो गई तो हमें अब याद नहीं है कि हम भी वैसे ही थे। पर सच्चाई ये है कि 12 से लेकर के 19 तक संवेदनशीलता का चरम बच्चों में होता है। छोटी छोटी बातों में बेहद सेंसिटिव होते हैं, वो ओवर रिएक्ट करते हैं, और उनका रिएक्शन जो है वो हर बार लॉजिकल हो ये जरूरी नहीं। ये भ्रम है हमारा कि बच्चा बड़ा हो रहा है, 16-17 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, समझदारी पूर्ण निर्णय लेगा, नहीं होता ऐसा। सच्चाई ये है कि साइकोलॉजिकल टर्मोइल, या जिसको हम कहें कि मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद, इतना ज्यादा होते रहता है उसके दिमाग में कि उसके लिए ये तर्कपूर्ण सोच समझ करके निर्णय लिया जाना संभव नहीं होता। कभी होता है पर रेयरली, और कभी नहीं भी होता, और इस सच्चाई को माँ बाप को समझना चाहिए। पहली भूल हम यहाँ करते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा बड़ा समझदार है और वो ऐसी गड़बड़ी नहीं करेगा। तो इसको थोड़ा रिव्यू करिए, हर बच्चा बिना किसी अपवाद के इस एज ब्रैकेट में बेहद संवेदनशील होता है, और नादानी पूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना लगातार बनी रहती है, इससे इनकार नहीं कर सकता कोई। दरअसल मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई माँ बाप इस भ्रम को पालते हैं कि अपने बच्चे को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं, मैं अपने बच्चे की नस नस से वाकिफ हूं। ये भ्रम है आपका। बच्चा आपकी औलाद है, परंतु आपकी औलाद 50% है। 50% आप हो, 50% माँ है, या 50% माँ है और 50% बाप है, और पिता का भी 100% नहीं है। जो उस 50% में भी पिता या माता का 50% माने 100% कंट्रीब्यूशन नहीं है। कुछ गुण दोष जो है वो अपने नाना नानी से लेता है, दादा दादी से लेता है, और लंबी चेन है, वो तो नेचर जानती है, हम और आप नहीं जान सकते। पर यह है कि ये भ्रम है, अगर हम ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को पूरी तरह समझता हूं, ऐसा सच नहीं है। सच्चाई यह है, इस बात को स्वीकार करें कि मेरा बच्चा एक स्वतंत्र एंटिटी है, वो एक स्वतंत्र इकाई है, वो बायोलॉजिकल यूनिट है, वो सोचता है, समझता है, वो बचपने से निकल करके अब यौवन की ओर, फिर यौवन से लेकर के युवा अवस्था और वार्धक्य की ओर, उस सिलसिले में उस चेन के हिसाब से बढ़ेगा। परंतु उस पूरी प्रोसेस में उसकी अपनी दुनिया है, उसकी अपनी दुनिया है, और उस दुनिया में केवल आप नहीं है, उसकी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने उसको प्रभावित किया हुआ है। बात सच है कि माँ बाप का पहला प्रभाव रहा होगा, भाई बहन का, उसके बाद फिर पड़ोसी, फिर टेलीविजन, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर मोबाइल, फिर न्यूज़पेपर, फिर दोस्त, फिर स्कूल, टीचर, चारों ओर से उसके ऊपर जो भी इनपुट आ रहा है, जो वो रिसीव कर रहा है, उसको वो गुनता है, सोचता है, और उसके अनुरूप उसका व्यक्तित्व गढ़ा जा रहा है। और जब व्यक्तित्व गढ़ा जा रहा है, उस समय वो अकेला है, उसका व्यक्तित्व अकेला गढ़ा जा रहा है। आप सबका योगदान है, परंतु इस बात का आग्रह या दावा करना कि मैं अपने बच्चे को 100% पूरी तरह से जानता हूं, इस भ्रम से बाहर निकलिए, ये मेरा आपसे पहला आग्रह है। अब ये जो बच्चा संवेदनशील हो गया, उसमें कुछ बातें उसके इस उम्र में होती हैं, और ये वैज्ञानिक अनुसंधान से स्थापित सत्य है, इसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो ये है कि इमोशनल लेवल पर वो चार प्रकार की प्रतिक्रियाएं देता है प्रमुख रूप से। एक तो वो इंट्यूटिव होता है, यानी उसको पूर्वाभास होने के बहुत सारी घटनाएं होती, मुझे लगता है ऐसा होगा और वैसा हो जाता है, कभी होता है कभी नहीं होता। पूर्वाभास तो हमको भी होता है, परंतु उस उम्र में, मैं खास करके कह रहा हूं ये जो आपके बच्चे की उम्र है 12 साल से 19-20 साल तक, इस उम्र में इंट्यूटिव कैरेक्टर जो है उसका बड़ा शार्प रहता है। कोई टॉपिक पढ़ लेता है, मुझे लगता है कि कल ये एग्जाम में आने वाला है, वो आ जाता है, कहता है देखा मैंने बोला था और आ गया। या वो किसी से कह देता है कि यार इसको थोड़ा पढ़ लेना भाई, यार मेरे को लग रहा है पता नहीं क्यों ये आएगा, और वो आ जाता है, तो फिर कहता है देखा मैंने बोला था तेरे को, तुमने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो भुगतो। इंट्यूशन, उसके बड़े इंट्यूशन बहुत होते रहते हैं। दूसरा उसका होता है इमोशंस, भावनात्मक रूप से वो बेहद सेंसिटिव होता है। तिल छिन में तोला, छिन में मासा, कभी गुस्सा करेगा, कभी तुनक मिजाजी उसकी इतनी हो जाएगी कि माँ बाप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बाप ने कुछ कहा नहीं कि बेटा फटाक से उठता है, मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता है, और फर्स्ट गियर में भी 40 के स्पीड से इतनी आवाज करके निकल जाता है, बाप का दिल बैठ जाता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। पर वो इमोशनली चार्ट है, करेगा कुछ नहीं, जाएगा किसी दुकान में, किसी पान ठेले में, किसी दोस्त के घर, दिमाग खराब करके रखे हैं, ऐसी शिकायत करेगा, थोड़ी इधर उधर की बात करेगा, फिर वापस आएगा। पर ये इमोशनल आउटबर्स्ट होंगे और ये होते रहेंगे लगातार, परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के भी होते रहेंगे इमोशनल आउटबर्स्ट। आक्रामकता, ये एक तीसरा कैरेक्टर उसके इसमें बहुत शार्प होता है, वो छोटी छोटी बातों को लेकर के एग्रेसिव मोड में आता है। आप समाज में हम लोग रहते हैं, अगल बगल आप देख सकते हैं, आपका बच्चा हो या किसी और का बच्चा हो, छोटी छोटी नादान सी बातों में भी जवान झगड़ते हुए दिखाई देते, बाहें चढ़ा लेते हैं, कॉलर पकड़ लेते हैं, गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, बात कुछ नहीं रहती। परंतु इमोशनल वो एग्रेशन जो है, उस इमोशन उसको एग्रेशन की ओर ले जाते हैं, झगड़ा, फसाद, मार पीट, गाली गुत्ता, बहुत कॉमन हो जाता है। और चौथा होता है जो बहुत खतरनाक, जिससे हम लोग और आप लोगों को डरना चाहिए, समझना चाहिए, संभलना चाहिए, वो होता है इस उम्र में बच्चा इम्पल्सिव होता है। इम्पल्सिव का मतलब है वो बिना सोचे समझे डिसीजन लेता है, वो सारा सार विचार नहीं करता, वो ये नहीं सोचता कि मैं जो निर्णय ले रहा हूं वो समझदारी पूर्ण है, तर्कपूर्ण है, किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, ये उसके दिमाग में आता ही नहीं। उसके दिमाग में अगर कीड़ा घुसा तो उसने तुरंत एक्ट किया, उठता धड़ से एक्ट कर देता है, और यही वो लम्हा है। जिस लम्हे में अगर कोई दुखदाई घटना हो, अब दुखदाई यानी उसकी तीव्रता की कसौटी हम नहीं तय कर सकते, वो बच्चे का इंपल्स है, वो उस इंपल्स में आकर के क्या निर्णय लेगा इसका कोई समीकरण नहीं है, उसकी कोई अनुपात नहीं है, उसकी कोई प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है कि ऐसा हो गया होगा तो ये होना चाहिए या ये गलती हो गई होगी तो इस प्रकार का इंपल्सिव बिहेवियर हो, ये कुछ नहीं। छोटी सी घटना का भी बहुत बड़ा इंपल्सिव रिएक्शन हो सकता है, बहुत बड़ी घटना को भी वो बिल्कुल मुंह रिसीव कर सकता है। तो ये रियलिटी है और ये रियलिटी आने वाले अनेक सालों तक चलेगी, इसलिए मैं आपको इस भूमिका को इस आपके सामने रखा हूं कि इसको इतना आसानी से मत लीजिए, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, इसको आप एक्सेप्ट करिए। एक बात कई बार पालक मुझसे कहते हैं कि अरे साहब हम भी तो बड़े हुए, हमसे तो ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा आपसे कहना है कि इसके दो कारण हैं, एक तो ये है कि आपसे हुआ परंतु अब आप भूल गए कि आपने ऐसा किया, कभी एकांत में बैठ के सोचिए हमने आपने भी अपने जीवन में बड़ी नादानियां की, माँ बाप बड़े हतप्रत से देखते रहे होंगे कि ये बच्चा पागल है क्या, कैसे बेवकूफ टाइप बात कर रहा है या बेवकूफ टाइप हरकतें कर रहा है, परंतु उन्होंने हमको टॉलरेट किया और हमने इंपल्स में आके वो निर्णय नहीं लिया या वो एक्शन नहीं लिया जो उनके दिल पर परमानेंट घाव कर दे, ये उनका सौभाग्य, ये मेरा सौभाग्य। परंतु इंपल्सिव बिहेवियर मैंने आपने सबने अपने जीवन में किया और ये आज का बच्चा भी कर रहा है। दूसरी बात यह है कि इंटरैक्शन की पॉसिबिलिटी और इंटरैक्शन की संभावनाएं पिछली जनरेशन तक पर्याप्त रूप से उपलब्ध थी, दो प्रकार से। एक तो यह है कि घरों में बच्चों की संख्या ज्यादा थी, बड़ा भाई बड़ी बहन छोटा भाई छोटी बहन, तो अगर कुछ हुआ भी तो कभी बड़ा भाई छोटे भाई को संभाल रहा है, कभी बड़ी बहन छोटी बहन को संभाल रही है, डांट डपट करके वो आपस में मामला सेटल हो जाता था, माँ बाप के कोर्ट तक की जाती नहीं थी, वो वहीं वहीं सेटल हो गया, डिफ्यूज हो गया। पास पड़ोस के साथ मिलना जुलना बहुत था, बगल की आंटी भी उतना ही अधिकार रखती थी जितना कि मेरी माँ रखती थी, मोहल्ले के अंकल मेरे ऊपर उतना ही अधिकार रखते थे जितना कि मेरे सगे अंकल रखते हो, और उन सब का मुझ पर नियंत्रण था, उन सब की मुझ पर नजर थी, और इसके चलते अगर मैं कुछ करता हुआ दिखूं या ऐसा कुछ लगे कि ये ठीक नहीं है तो वो बेझिझक बोल देते थे, और मेरे माता पिता को इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता तो वो कहते थे कि अंकल कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, तुम ठीक से रहो। कहने का मतलब यह है कि देयर वेयर मोर सोशल इंटरेक्शन, देयर वेयर मोर ओपनिंग्स टू शेयर माई फीलिंग्स, पिछली जनरेशन की ये एक सुविधा थी जो आज की जनरेशन में नहीं है, दुर्भाग्य से। घरों में बच्चों की संख्या दो और अब अधिकांश घरों में बच्चों की संख्या एक हो गई है, और एक होने की वजह से माँ बाप इतने सहमे डरे रहते हैं कि वो लगातार उसको मॉनिटर करते हैं, उसके पीछे छाया की तरह पड़े रहते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे माँ बाप को कहते हुए सुना है, मुझे हंसी आती है, पर वो कहते हैं अरे साहब क्या बताऊं, एक ही बेटा है एक ही बेटी है, मैं इसकी आंख में आंसू की एक बूंद नहीं देख सकता। मुझे हंसी आती है, क्यों नहीं देख सकता, मेरे बच्चे को हंसना ही सिखाऊंगा क्या, रोना नहीं सिखाऊंगा, कोई गलत हो रहा होगा तो मैं उसको समझाऊंगा नहीं, उसको अगर कोई चीज तकलीफ देगी तो उसको रोना नहीं चाहिए, उसको ठोकर लग जाएगी चोट लग जाएगी तो माँ बाप के दिल में घाव हो जाता है, इसलिए वो स्कूल से घर और घर से स्कूल, इसके बीच में उसका इंटरेक्शन जो है हम उम्र बच्चों के साथ मिनिमम हो गया है। उसकी दुनिया में दूसरों की उपस्थिति माँ बाप ने अपनी नादानी से कम कर दी, वो एक आइसोलेशन की जिंदगी जी रहा है, जिसके चलते जब उसके दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक उथल पुथल मचती है तो उसको संभालने वाला कोई नहीं, और उसके चलते नादानी पूर्ण हरकतें उससे होती हैं। सोशल इंटरेक्शन हम उम्र बच्चों के साथ, उसके उठने बैठने की फ्रीडम जाने दीजिए, लग जाएगा इन्फेक्शन हो जाएगा, ये सारी बेकार की बातें हैं। हम अपने बच्चे को मनोवैज्ञानिक और भौतिक दोनों रूप से लगातार कमजोर करने का काम कर रहे हैं। गिव हिम एक्सपोजर, लेट हिम टॉक विद मेनी, लेट हिम इंटरैक्ट, कुछ गलत होगा कोई बात नहीं, सही होगा कोई बात नहीं। बच्चे के किसी भी विवाद की स्थिति में माँ बाप का तत्काल एंटर कर जाना और अपने बच्चे के बचाव में झगड़ा फसाद पर और शिकायत पर उतर आना, ये समझदारी पूर्ण निर्णय नहीं है। हर बार हमारा हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। हम झगड़ जा पड़ते थे तो बड़े आके पहले कहते चलो हटो, पहले हटो, दूर हो जाओ। सो पहले झगड़े की बात को दूर करिए, और किसी पक्ष को थोड़ा बहुत सुनते थे या कई बार नहीं भी सुनते थे, चलो बंद करो ये फालतू की झगड़ा, कोई मतलब नहीं है, चलो हाथ मिलाओ, गले मिलो, जबरदस्ती एक पैचअप करके एक सिचुएशन को डिफ्यूज करने का काम वो करते थे। आजकल ये करने के बजाय माँ बाप आपस में ही झगड़ा करके एक नया माहौल बनाने लगे। बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप प्रोटेक्टर हैं तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये सही नहीं है। लेट हिम हैंडल, आफ्टर ऑल वी आर सोशल क्रिएचर ना, हम सामाजिक जीव हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हमारा सोशल इंटरेक्शन हो। और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से माँ बाप अपने बच्चे को आइसोलेशन में जिला रहे हैं, जिसकी वजह से ये भय पैदा हो गया कि कुछ आत्महत्या जैसी घटनाएं ना हो जाए। हो रही है, नहीं हो रही है ऐसी नहीं, और उसका कारण यह है कि बच्चे की दुनिया में बच्चा अकेला है। तो क्या किया जाने, पहली बात तो मैंने आपसे कही कि हाँ, पहली बात तो यह है कि हम उम्र बच्चों के बीच उसको एक्सपोज होने दीजिए, थोड़ा उठने बैठने दीजिए, कोई सही गलत झगड़े होते हैं होने दीजिए। हर जगह पर हम जा करके अपने बच्चे की वकालत करें ये जरूरी नहीं है, कुछ डक करना सीखिए। बच्चे को भी महसूस होने दीजिए कि साहब बहुत सारी कुछ ऐसे मामले हैं जिसको मुझे ही हल करना है, कुछ बहुत बड़ा मसला नहीं। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि माँ बाप आज अपने बच्चे के लिए समय नहीं दे पाते। जो काम पहले मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन करती थी, वो नहीं होने की वजह से ये काम अब मेरे माँ बाप को करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा, और आप कहते हैं कि आपके पास समय नहीं है। ये उस बच्चे का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत सारे घरों में नाना नानी दादा दादी मिसिंग है। नाना नानी दादा दादी ये वो फोर्स हुआ करते थे, जो कुशन का काम करते थे। बच्चा अपनी एगनी शेयर करता था दादा दादी के पास जाकर के, नाना नानी के पास जाकर के, आज वो नहीं है उसके पास। उसको संवाद की जरूरत, सबसे बड़ा काम संवाद का होना है। संवाद करिए बच्चे के साथ प्रतिदिन, कम से कम आधा घंटा उसकी दुनिया में घुसिए और उसकी उसकी बात करिए। अलाउ हिम टू शेयर हिज फीलिंग्स, गुड और बैड। हस्तक्षेप मत करिए, सुनिए, केवल कुरेदिए, थोड़ा उसको उसकी दुनिया में घुसने का प्रयास करिए कि उसकी दुनिया में हो क्या रहा है। बहुत सारी काम की बातें, बहुत सारी बेकार की बातें वो बोलेगा, सुनो, और जो बेकार की बातें हैं उनको संयमपूर्ण ढंग से हैंडल करने की कोशिश करिए। एक बच्चे को यह लगना चाहिए कि कोई है जो उसकी बातें सुनता है, जो कोई है जो उसकी बातें समझने की कोशिश कर रहा है। दुनिया में वो अकेला नहीं है, उसको समझने वाला भी कोई है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। स्पेयर सम टाइम, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इतनी व्यस्तता किस काम की कि हमने जिसे अपने भविष्य के रूप में, अपने बुढ़ापे की लाठी के रूप में जिसको दुनिया में लाया, हम उसके निर्माण में प्रतिदिन आधा घंटा नहीं दे पा रहे हैं। ये बाकी व्यस्तता बेकार है आपकी, अगर आप आधा घंटा बच्चे के लिए नहीं दे पाते। कम समय निकाल सकते हैं, आपको तय करना है। 24 घंटे का टाइम टेबल आपका अपना है। आप ब्रेकफास्ट पर बैठते हैं, आप सुबह की चाय में बैठते हैं, आप रात के खाने में बैठते हैं, आप उसको लेकर कहीं घूमने जाते हैं तब बात करते हैं, ये आप तय करिए आपका शेड्यूल कैसा है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात, You have to spare half an hour with the child per day without fail, बिना लाड लपेट के। और उसके लिए कोई बहाना मत खोजिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा करते हैं तो आप अपराध करते हैं बच्चे के लिए, यह अपराध है आपके द्वारा किया गया। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा, मैंने अब तीसरी कहूंगा, कि हम अपने बच्चे को हमेशा विजेता देखना चाहते हैं, जो कि एक बड़ी अन्यायपूर्ण मांग है। जीवन में इस सृष्टि में जो आदमी हाड़ मांस के साथ, जो जीव हाड़ मांस के साथ पैदा हुआ, वो पैदा होने से मरने तक लगातार ग्रोथ सक्सेस के रास्ते से ही गुजरा, ऐसा नहीं हुआ। अवतारी पुरुषों के साथ नहीं हुआ साहब, हम और आप तो बहुत सामान्य लोग हैं। अवतारी पुरुषों के साथ कृष्ण को भी मैदान छोड़कर भागना पड़ा, रणछोड़ दास कहला। राम एक अवतार होकर पैदा हुए परंतु 14 साल। अब हम बहुत जस्टिफाई करते हैं उसको कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से राम ने काम किया, परंतु सामान्य मनुष्य की नजर से देखें तो था राम पहले दिन से जो है उसके उत्कर्ष का ग्राफ, सफलता का ग्राफ अगर ऊंचा ही जाना चाहिए था, क्योंकि तो अवतार है, नहीं हुआ। 14 साल वनवास की तपस्या, ये एक राजघराने में पैदा बच्चे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, वो उसको भोगना पड़ा। क्या बुद्ध, क्या महावीर, क्या पैगंबर मोहम्मद, उनको भी भागना पड़ा। क्या क्राइस्ट, उनको भी कहीं न कहीं से हार के असफलता की झाल झेलनी पड़ी। ये अवतारी पुरुष हैं, ये चाहते तो केवल उत्कर्ष का रास्ता ही अपना सकते थे, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि हाड़ मांस के साथ अगर पैदा हुए हो तो ऊंचाई नीचाई ऊंचाई, आपका ग्राफ जो है ऊपर नीचे होता रहेगा। और इसलिए मैं अपने बच्चे से अगर केवल सफलता की अपेक्षा चाहता हूं तो ये मैं एक अलग फिर अन्याय अपने बच्चे से करता हूं। और इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, और तरीका है कि साहब अपने बच्चे से हमेशा सफलता का आग्रह मत करिए, किलर इंस्टिंक्ट होनी चाहिए, यानी आप किसी भी काम को लीजिए पूरा अपनी ताकत झोंक दीजिए, इसका आग्रह जरूर हो, परंतु हर बार आप नंबर वन आए, हर बार आप सफल ही हो। इसका जो दबाव हम पैदा करते हैं वो बच्चे के दिमाग पर एक नकारात्मक प्रभाव डालता है, वो उसको सुसाइडल की ओर ले जाता है। लोग मानते नहीं है ऐसा, जब मैं कहता हूं लोग नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम तो ऐसा नहीं करते हैं, परंतु उनका ओवरऑल बिहेवियर यही रहता है कि बच्चा जो काम करे उसमें नंबर वन आए, उसका टॉप करे, वो सफल ही रहे। और इसका एक बहुत शानदार तरीका मैं आपको सुझाता हूं, आगे भी काम आएगा आपके, साहब उसको किसी खेल में खेलने के लिए मोटिवेट करिए, प्रमोट द चाइल्ड टू प्ले सम गेम, कोई खेल खेले वो, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज है जहां हारने को भी मुस्कुरा के स्वीकार करना इंसान सीखता है। एक इंसान जब हारता है तो मुस्कुराते हुए जीतने वाले से बधाई को बधाई देता है, हालांकि मन में उसको खराब लग रहा होगा, पर चूंकि वो हारा है और सामने वाला जीता है तो पहला बधाई देने वाला व्यक्ति वो हारने वाला होता है। और ये एक जीवन की बड़ी सच्चाई होती है, टू एक्सेप्ट डिफीट स्माइलिंगली, मुस्कुराते हुए असफलता को स्वीकार करना। ये वो कुछ घटना, ये वो बातें हैं, क्योंकि खेल में हर बार आप जीतोगे ऐसा नहीं है, कोई ना कोई सवासेर मिलेगा वो आपको हराएगा, और हराना चाहिए। और जब ऐसा होता है तब आप ये जो सुसाइडल टेंडेंसी के ट्रैप से बाहर निकलने में आपको मदद मिलती, इसलिए मोटिवेट करिए। परीक्षा के रिजल्ट आने को हैं, मैं अपने पालकों से कहूंगा कि वो अपने बच्चों से बात करना शुरू करें, उनको ये हिंट देना शुरू करें कि रिजल्ट रिजल्ट है, जैसा आए मेरे लिए तुम रिजल्ट से प्यारे हो, तुम्हारा रिजल्ट कुछ भी आए मेरे लिए रिजल्ट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए तुम्हारी खुशी महत्वपूर्ण है। अच्छा आता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं आता है तो भी अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट। ये सिग्नल देना शुरू करिए, उसको चाहते हैं ये भाव अब लगातार देना शुरू कर दीजिए आप। अगर आप ये कर पाते हैं तो बच्चा इस प्रकार की टेंडेंसी से बचेगा। और एक बात फिर भी सुरक्षात्मक कदम के रूप में मैं कहना चाहता हूं, और वो बात यह है कि साहब अपने घर में जितने भी खतरनाक चीजें होंगी उसको उस बच्चे की रीच से बाहर करिए। बच्चा ये नहीं देखता कि खतरनाक चीज से उसके प्राण जाएंगे या नहीं जाएंगे, इंपल्स में वो कुछ भी ऐसा फिनाइल पी दिया, डामर गोली खा दिया, ऐसा कुछ तो भी न, उसमें ऐसा कुछ भी हरकत कर सकता है, तो थोड़े हजारदस्त जो चीजें हैं वो उसकी पकड़ से दूर हो। थोड़ा अभी के समय में साथ साथ सोने का कार्यक्रम करिए, गर्मी के दिन है, ठंड, एक कमरे में कूलर लगा कर सब लोग यहाँ सोए, यानी मेरा कहना है कि एक कमरे में अंदर से बोर्ड लगा के सोने वाला जो कार्यक्रम है उससे थोड़ा डाइवर्ट करिए, जो टॉयलेट यूज करता है उसमें भी नजर रखिए कि एक निश्चित समय से ज्यादा समय वो अंदर न लगाए, बीच बीच में आवाज देते रहिए, क्या हो गया, इतना देर क्यों लग रहा है, आज तबीयत ठीक नहीं है क्या, पेट गड़बड़ तो नहीं है, केवल ऐसा बोल के एक कनेक्टिविटी बनाए रखिए। ये मैं सेफ्टी मेजर के रूप में कह रहा हूं, अगर ये करते हैं, क्योंकि अभी एक जाते जाते एक बात और कह दूं, जो बच्चा सुसाइड करने का निर्णय ले लेता है वो सुसाइड करने के ठीक 24 घंटे पहले अत्यंत सामान्य और अत्यंत खुशगवार बिहेवियर का नाटक रचता है। आपके सामने वो ऐसा माहौल बनाएगा कि वो सबसे खुश है, वो सबसे प्रसन्न है, वो सबसे बिल्कुल दोस्ताना है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ बिहेव करते समय सहज सामान्य और खुश दिखाई देने का प्ले कर रहा है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि जिसने सुसाइड करने का निर्णय लिया है वो सुसाइड के एक्ट के 24 से 48 घंटे पहले हद दर्जे का नॉर्मल बिहेवियर है, और वो इतना नॉर्मल बिहेवियर होता है कि आदमी 99% प्रकरणों में आप देखेंगे कि माँ बाप कहते हैं एकदम सब ठीक ठाक था, पता नहीं अचानक क्या हो गया। वो अचानक नहीं, वो उस बच्चे की उस समय की बड़ी सुनियोजित रणनीति होती है कि मेरे इस एक्ट को एग्जीक्यूट करने के पहले उसकी हल्की सी झलक भी किसी को पता ना लगे। और इसलिए अभी का समय ऐसा है, मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा मौज करिए अभी के लिए। बाकी कुछ बातें जो मैंने आपसे कही हैं वो आने वाले अनेक 2-4-5 साल तक आपको मदद करेंगी। इंटरैक्टिव बने रहिए, खेल खिलवाइए, उसको हारना सिखाइए, मुस्कुरा करके हारना, उसको फेस करना सिखाइए, तो इससे एक संतुलित बैलेंस्ड युवा के रूप में विकसित होने में उसको मदद मिलेगी, और ये जो सोसाइटी की टेंडेंसी का जो भय आपके दिमाग में है वो दूर होगा। भयभीत मत होइए, कोई भी बच्चा यूं ही प्राण देना नहीं चाहता। उसकी दुनिया में जब वो अकेला हूं ऐसा महसूस करता है, जब उसको ऐसा लगता है कि उसकी असफलता को लेकर के कोई भी संवेदनशील नहीं है, या उसको ऐसा लगता है कि उसकी असफलता जो है उससे उसके माँ बाप जो है बहुत ज्यादा व्यथित और दुखी होने वाले हैं, तो उस समय वो हताशा में इस प्रकार के इंपल्सिव बिहेवियर करता है। अपने बच्चे को ये सिग्नल न दें या न पहुंचे, इसकी सावधानी बरतिए। आपने मेरी बातें मेरा विश्वास है कि गंभीरता से सुनी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की मैंने कुछ कमेंट देखी हैं, पर मैं उन कमेंट के लिए आप सबका व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं। पर कभी इस सिलसिले में कोई व्यक्तिगत सवाल भी अगर हो तो इस प्रोग्राम से हट करके भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आप संकोच मत करिए, मैं मेरा ये ओपन ऑफर टू द पेरेंट्स है, आपका बच्चा जितना आपका है उतना ही मेरा है, वो पूरे समाज का है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी हमारी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग मेरा मोबाइल नंबर नोट करें, इस प्रोग्राम का रेफरेंस दे करके कभी कोई सवाल दिमाग में उठता है बेझिझक पूछिए। यानी ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको मैं सोसाइटी को रिपे करूंगा। तो आप लोग चाहें तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 888-972-4442, 888-972-4442। बिल्कुल मत झिझकिए, आपकी परेशानी मेरी भी परेशानी है, आपका बच्चा मेरा भी बच्चा है, मैं इस विश्वास और कॉन्फिडेंस से आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी कमेंट्स के लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ आपका। नमस्कार।
सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।